अभूतपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
श्रोताओं, बीते सप्ताह दीपावली का पर्व देश दुनिया ने उमंग और उल्लास के साथ मनाया और हम अपेक्षा करते हैं कि आपने भी उल्लास और उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया होगा। और दीपावली के साथ जो पर्वों का मौसम है वो बहुत सुहावना होता है और मौसम में भी जो एक सुहानापन है, ठंडक है, वो इन दिनों हमें महसूस होती है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में तो हमेशा ही त्योहारों का मौसम चलता रहता है, क्योंकि यहाँ के 8 राज्यों की संस्कृति और लोक परंपरा में वो विविधता है जो हमेशा हमें एक उत्सव की झलक देती है। तो इन 8 राज्यों की संस्कृति विविधता को आप तक पहुंचाने के लिए हम पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम हर सप्ताह आपके लिए लाते हैं। हर रविवार शाम 5:30 बजे से एक कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आते हैं। आज भी पूर्वोत्तर भारत के विविध रंगों का गुलदस्ता आपके लिए सजाकर हम लाए हैं। आज के कार्यक्रम में एक बार फिर आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। तो श्रोताओं, हमने क्योंकि उत्सव से ही बात शुरू की है तो आइए एक और हम उत्सव की बात करते हैं। ऑटम फेस्टिवल, ये एक ऐसा महोत्सव है जो हर साल दिल्ली में आयोजित होता है और नागालैंड सरकार और दिल्ली सरकार के सहयोग से इस उत्सव को आयोजित किया जाता है। तो ऑटम फेस्टिवल 2025 के संस्करण का इस बार भी आयोजन हुआ। शुक्रवार और शनिवार को आयोजित हुए इस उत्सव में नागालैंड की विविध संस्कृति के रंग देखने को हमें मिले और निश्चित तौर पर जो भी वहां आगंतुक पहुंचे थे उन्होंने न सिर्फ नागालैंड की संस्कृति और लोक कला और खान पान का लुत्फ उठाया, बल्कि वहां जो कारीगर पहुंचे थे जिन्होंने अपने हस्तशिल्प की कलाकारी दिखाई और बहुत से आगंतुकों ने वहां के जो उत्पाद हैं उन्हें खरीदा भी और उनकी सराहना भी की। तो एक छोटी सी झलक एक रेडियो रिपोर्ट के माध्यम से हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से ये ऑटम फेस्टिवल एक विशेष महोत्सव है, विशेष तौर पर नागालैंड की संस्कृति और परंपरा को प्रस्तुत करने का, और किस तरह से इस फेस्टिवल से नागालैंड के पर्यटन को लेकर भी लोगों में रुचि बढ़ रही है। और क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी आने वाला है जो दिसंबर महीने की शुरुआत में आयोजित होता है, तो इस फेस्टिवल की शुरुआत के तौर पर हम ऑटम फेस्टिवल को देख सकते हैं। तो आइए हमारी ये खास रिपोर्ट ऑटम फेस्टिवल 2025 पर सुनते हैं।
राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय ऑटम फेस्टिवल 2025 का भव्य और रंगारंग आयोजन हुआ। नागालैंड की समृद्ध और जीवंत संस्कृति को समर्पित ये उत्सव शुक्रवार 24 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित नागालैंड हाउस में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन नागालैंड सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है। फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति, भाषा और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने इस उत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया। नागालैंड सरकार के पर्यटन मंत्री तेमजिन इमना अलोंग ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। इनके अलावा कई देशों के राजदूत, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस सांस्कृतिक समागम के साक्षी बने। उद्घाटन के बाद मंत्री कपिल मिश्रा ने आर्टिसन कॉर्नर और पारंपरिक हस्तशिल्प एवं व्यंजनों के स्टॉलों का दौरा किया। इन स्टॉलों पर नागालैंड के विभिन्न जनजातीय समुदायों के कारीगरों ने अपने हाथों से तैयार किए गए अद्भुत उत्पाद प्रदर्शित किए। इन उत्पादों में आकर्षक पारंपरिक वेशभूषाएं, बारीक नक्काशी वाला हस्तशिल्प, बांस और बेत से बनी कलाकृतियां और नागालैंड के विशिष्ट आभूषण शामिल थे। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ये फेस्टिवल दिल्ली के लोगों को नागालैंड की समृद्ध संस्कृति और विरासत को करीब से जानने का एक अद्भुत अवसर है। उन्होंने जोर दिया कि ये आयोजन न केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है बल्कि नागालैंड के सबसे प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव आगामी 26वें हॉर्नबिल फेस्टिवल की एक शानदार शुरुआत और पूर्वावलोकन भी है। यहाँ अपने श्रोताओं को बता दी कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड में 26वें हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन होगा। दो दिन तक चले इस ऑटम फेस्टिवल 2025 ने आगंतुकों को नागालैंड की कला, संगीत, नृत्य और भोजन का भरपूर आनंद लेने का अवसर दिया। पूरे नागालैंड हाउस परिसर में पारंपरिक नागा लोक संगीत की गूंज सुनाई दी और जनजातीय नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आगंतुकों को यहाँ प्रमाणिक नागा व्यंजन चखने का भी अवसर मिला, जिसमें मसालों और स्थानीय जड़ी बूटियों का अनूठा स्वाद मौजूद था। हमारी सहयोगी विनीता सिंह ने कुछ स्टॉल संचालकों से बात की, आइए सुनते हैं।
ऑटम फेस्टिवल में हम स्टॉल्स की ओर जब बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है एक दुकान, एक ऐसे स्टॉल जहाँ पे लिखा हुआ है किनतेम, यानी एक कपड़ों की ये छोटी सी दुकान है जहाँ पर बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं जो कि शॉल हैं और कॉटन है और थोड़ी सी गर्माहट लिए हुए ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं। और साथ में मुझे दिख रही है एक यहाँ पर लड़की है जिनसे मैं बात करूंगी। जी, अपना नाम बताइए।
मेरा नाम जिरमिन है।
जिरमिन, यहाँ पर मैंने देखा स्टॉल में बाहर में नाम लिखा है किनतेम।
हाँ जी।
इस शॉप का नाम है, मतलब स्टॉल का, उसका क्या अर्थ होता है?
उसका मीनिंग है कम्युनिटी आओ डायलैक्ट में।
अच्छा, और आप वैसे किस कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं?
मैं वैसे अरुणाचल से हूँ और मैं निशी ट्राइब से हूँ।
और शायद इसलिए आप हिंदी बोल पाती हैं क्योंकि अरुणाचल में लोग काफी लोग हिंदी बोल पाते हैं। तो ये कितने सालों से आप यहाँ पर हैं, इस कार्य से संलग्न हैं या फिर आप पढ़ाई कर रही हैं?
वैसे तो जब छोटी थी तब मेडिकल के लिए या फिर बस मस्ती के लिए आती थी, बट नाउ तो आई डिड माई कॉलेज डीयू में पढ़ा मैंने, तो आफ्टर दैट नाउ आई एम जस्ट हियर।
ओके। और जब यहाँ पर आप इस माहौल में आ रही हैं ऑटम फेस्टिवल, कैसा लग रहा है, लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है जब यहाँ पे सामान देखते हैं, तो क्या उन्हें जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है?
हाँ, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ रहना क्योंकि इट्स एक तरीका है टू एम्पावर द पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड स्पेशली ये वीवर्स के साथ काम करता है फ्रॉम नागालैंड एंड वैसे भी वीवर्स अभी बहुत कम रहते हैं, सो ये पीपल इंटरेस्टेड लगते हैं वैसे बहुत एंड मेखला भी उन्हें चाहिए होता है।
अच्छा, मेखला चादर यहाँ पे मिलता है?
हाँ, इसे कहते हैं मेखला।
अच्छा, किसी मैंने कोई भी चादर यहाँ पे जितने भी बिक रहे हैं सारे मेखला के अंदर में आते हैं?
मेखला आते हैं, फिर स्टॉल आते हैं।
कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे उन लोगों को जो आज यहाँ पर नहीं है, तो वो इसकी ब्यूटी को कैसे एंजॉय करें?
अगर आपके दिल में क्यूरियोसिटी है तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, और अगर क्यूरियोसिटी ना भी हो तो आप खुद को फोर्स कर आना चाहिए इन टाइप ऑफ मार्केट्स एंड फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि आपको एक्सपोजर मिलेगा जो आपको कहीं दिल्ली में नहीं दिखेगा।
और बिल्कुल, और ये सारे जो आइटम्स आप यहाँ डिस्प्ले में हैं सब बहुत डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है, और ये यूनिकनेस जो है नॉर्थ ईस्ट की खासियत है, और मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और जिरमिन, आपसे बात करने का मुझे बहुत बहुत एक अच्छा सा फीलिंग हुआ है, तो मुझे विश्वास है कि आप आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगी और इन बुनकरों को बहुत सहायता देंगी और उनको एनकरेज करेंगी, जिसके लिए आज आप शायद यहाँ पर हैं।
एब्सोल्युटली।
ऑटम फेस्टिवल में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, और मेरी मुलाकात एक महिला से होती है जो कि बहुत ही शांति से बैठी हुई हैं, तो मैं उनका नाम पूछूंगी। नाम बताइए।
मेरे नाम नामपो कुन्याक है।
आप कहाँ से हैं?
हम नागालैंड से।
नागालैंड में किस जगह से हैं? आपका प्रांत, आपका कौन सा इलाका है?
मोन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ।
और दिल्ली में आना कैसा लगता है आपको?
बहुत अच्छा है।
करती क्या हैं आप वैसे? कुछ तो काम करती होंगी।
ये हाथ का काम ये सभी करते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, कपड़ा वीविंग वगैरह करते हैं।
अपने से बनाती हैं खुद?
हाँ, खुद ही बनाते हैं।
कहाँ से सीखा?
हमने ऐसे किसी के द्वारा सीखा है, ट्रेनिंग वेनिंग ऐसे नहीं है कुछ, लेकिन हम अपना सिस्टर माँ किसी से सीख लेते हैं।
तो जब आपने सीख लिया और आप उसको कमर्शियली यूज करना जब चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या मेजर्स लेते हैं, मतलब कैसे कैसे जाते हैं उसको डिस्प्ले करते हैं, कहाँ पे दिखाते हैं ताकि लोग उसको खरीदें? क्या कि आप तो बहुत बना रही हैं।
जब ये मेला लगते हैं कहीं पे ना, तो स्टॉल लग जाता है उसमें, और उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हम अपना सारा काम उसमें डिस्प्ले करते हैं और सेल्स भी करते हैं।
तो आकाशवाणी के श्रोता, आपकी बात सुनकर बहुत खुश हुए, धन्यवाद।
ये उत्सव देश की राजधानी के केंद्र में पूर्वोत्तर भारत की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता का एक सुंदर प्रदर्शन है, जो प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बल देते हुए देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को और मजबूत करता है। ये फेस्टिवल दिल्ली और नागालैंड के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के नए द्वार खोलेगा। नागालैंड सरकार के पर्यटन विभाग को अपेक्षा है कि इस तरह के आयोजन से हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को और अधिक आकर्षित किया जा सकेगा।
बीते सप्ताह दीपावली के पर्व के अवसर पर हमने देखा कि किस तरह से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा सरकार द्वारा दिया गया, और इसके परिणाम के तौर पर हमने देखा भी कि बड़ी मात्रा में जो हमारे शिल्प कला है, हमारे स्वदेशी उत्पाद है, उनकी बड़ी मात्रा में बिक्री हुई और लोगों ने उन उत्पादों को खरीदने में बहुत बड़ी रुचि दिखाई। दीपावली के पर्व के अवसर पर अक्सर देखा जाता है कि विभिन्न धातुओं से बने दीपक और मिट्टी के बने दीपक बड़ी मात्रा में खरीदे जाते हैं और उन्हें दीपावली के अवसर पर जलाया जाता है। ये एक बहुत पुरानी परंपरा है और इस परंपरा का लाभ उन शिल्पकारों, उन कारीगरों को मिलता है जो इन दीपकों को बनाते हैं। तो त्रिपुरा के भी विभिन्न कारीगर दीपावली के अवसर पर ऐसे ही कई धातु और मिट्टी के दीपकों को बनाते हैं। हमारे संवाददाता आदित्य दत्ता ने हमें एक खास रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने उन कारीगरों से बातचीत की जो मिट्टी और धातु के इन दियों को बनाते हैं, बेचते हैं। तो आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
दीपावली का अर्थ है चारों ओर जगमगाती रोशनियों की कतारें। धातु के दियो और पारंपरिक मिट्टी के दीपों के साथ साथ रंग बिरंगी अलग अलग आकार और डिजाइन वाली मोमबत्तियाँ जब जलती है तो हर ओर उजाला फैल जाता है। जैसे ही त्योहारों की मौसम आता है, मोमबत्ती बनाने वाले कारखानों में भी रौनक बढ़ जाती है। ऐसे ही दृश्य दिखता है आगरतला के इंद्रनगर डेयरी क्षेत्र से आगे नौगांव से शीतलाबाड़ी इलाके में झुलंदे की कारखाना में। एक ओर है मिट्टी के दियो की परंपरा और दूसरी ओर है आधुनिक बिजली और इलेक्ट्रॉनिक रोशनी की चमक। इन दोनों के बीच अपनी सदगी और परंपरा से जुड़ी मोमबत्ती आज भी अपनी जगह बनाए हुए है। सस्ती, सुंदर और हमेशा मांग में रहने वाली ये मोमबत्ती हर त्योहार में घरों का रोशन करती है। इसी मांग के सहारे झुलंदे ने 2004 में लोकनाथ लाइट फैक्ट्री की शुरुआत की। मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने इस काम को आजीविका बना लिया। पूरे साल यहाँ बत्तियाँ तैयार की जाती है, मोम पिघलाकर सांचे में डाला जाता है, ठंडा कर काटा जाता है और फिर पैक कर बाजार भेजा जाता है। तैयारों की शुरुआत विश्वकर्मा पूजा या गणेश पूजा से ही हो जाती है और दीपावली के समय तो मांग अपने चरम पर पहुंच जाती है। झुलंदे बताते हैं कि दीपावली के समय ऑर्डर पूरे करने के लिए अतिरिक्त कामगार भी बुलाने पड़ते हैं।
मैं तो गुवाहाटी में गया, इधर से एक फैक्ट्री में काज देखा, देखा के बाद काज शुरू किया। त्रिपुरा में पैराफिन कच्चा माल है, ये गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन लगते है, अभी लगते है, अभी मार्केट में अवेलेबल होता है, जीएसटी माध्यम में हो जाता है। 2004 में रजिस्ट्रेशन दरकार होता है, कोटा होता है, 5 बैग होगा, 6 बैग होगा, इससे कोटा होते है। अच्छा काम है, करने से रोजगार हो सकता है।
ये काम परंपरा से जुड़ा है, इसमें वोकल फॉर लोकल की भावना भी है और आत्मनिर्भरता की संदेश भी। अगरतला में जलती रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ केवल रोशनी ही नहीं फैलाती बल्कि मेहनत, उम्मीद और साथ मिलकर आगे बढ़ने की कहानी भी सुनाती है। सच में दीपावली का असली अर्थ ऐसे ही प्रकाश में झलकता है। आदित्य दत्ता, पूर्वोत्तर डायरी, आकाशवाणी, अगरतला।
दो हजार 2018 से राष्ट्रीय पोषण माह अभियान भारत सरकार ने शुरू किया था और इस अभियान के नतीजे में हमने देखा कि माताओं और शिशुओं की मृत्यु दर में जहां एक तरफ कमी आई है, वहीं हर देश के कोने कोने तक पोषण युक्त आहार माताओं और शिशुओं तक पहुंचाया गया है। मिजोरम में भी राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के बहुत महत्वपूर्ण नतीजे देखने को मिले हैं और इस अभियान की मदद से माताओं और शिशुओं की मृत्यु दर में जहां एक तरफ मिजोरम में कमी आई है, वहीं इस अभियान के तहत पोषण युक्त आहार के वितरित होने से पोषण को भी बढ़ोतरी मिल रही है। तो हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट में जानते हैं कि किस तरह से मिजोरम में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है।
देश उम्मीद से है, करो पोषणम, करो पोषणम, 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 पोषणम।
पिछले 8 वर्षों में मिजोरम में माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय पोषण माह अभियान ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अभियान का उद्देश्य विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में लोगों में पौष्टिक आहार और संपूर्ण देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, जहां पहले स्वास्थ्य सेवाएं और जानकारी सीमित थी। पहले मिजोरम में शिशु मृत्यु दर अधिक थी, जिसका मुख्य कारण पौष्टिक आहार की कमी और माताओं की उचित देखभाल का अभाव था, लेकिन पोषण माह के अंतर्गत निरंतर चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के कारण अब इन दरों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ये बदलाव राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में सकारात्मक संकेत है। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान हर जिले में नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें केवल पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि परिवारों को संतुलित आहार, मानसिक स्वास्थ्य और अभिभावकों की जिम्मेदारी के प्रति भी शिक्षित किया जाता है। अभियान का संदेश यही है कि पोषण सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये माँ और बच्चे के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी से बात करते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि स्वस्थ बच्चों के पालन पोषण में माता पिता की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने पौष्टिक आहार के साथ ही बच्चों के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने और प्रारंभिक आयु से ही उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में आयुष निदेशालय की कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर शर्ली लालबिया कजुआली छंगते ने बताया कि पोषण माह महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की लंबाई और वजन की निगरानी करना, एनीमिया के लक्षण पहचानना और अवरुद्ध विकास जैसी समस्याओं पर ध्यान देना है। ये अभियान हर साल सितंबर महीने में मनाया जाता है, ताकि माताओं और छोटे बच्चों के लिए सही पोषण के महत्व को समाज में बताया जा सके। डॉक्टर शर्ली ने ये भी बताया कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक शिक्षाप्रद पुस्तिका तैयार की जा रही है, जिसमें उन्हें पौष्टिक भोजन के महत्व के बारे में जानकारी दी जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में पौष्टिक खाद्य पदार्थों का वितरण भी किया जा रहा है, ताकि अभियान का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।
As part of the Rashtriya Poshan Maah Nutrition Month campaign, efforts are being made to raise awareness about the importance of a healthy lifestyle. The theme for this year, Right Nutrition, Healthy Life, emphasizes the prevention of non-communicable diseases, which are among the most common health issues today.
डॉक्टर शर्ली लालबिया कजुआली छंगते ने बताया कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए गर्भाधान से लेकर बच्चे के 2 वर्ष की आयु तक का समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस अवधि में माताओं को पर्याप्त मात्रा में आयरन, कैल्शियम और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि जन्म के पहले 6 महीनों तक केवल स्तनपान ही बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। उसके बाद बच्चे के विकास के लिए तरल रूप में पोषक तत्वों से भरपूर आहार और फलों को शामिल करना चाहिए। आइजोल से हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं लवली निकम।
ओख से झांकता है भारत का कण, अन्न प्राशन करो, स्वस्थ बचपन करो, माँ का संसार हो, दूध सा प्यार हो, आशा वाला नया एक जीवन करो।
श्रोताओं, हमारी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया, अपने प्राण निछावर किए। पूर्वोत्तर भारत में भी ऐसी महान विभूतियां हुई हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। ऐसे ही एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं रानी गाइडिनल्यू। रानी गाइडिनल्यू पूर्वोत्तर भारत की वो प्रेरक विभूति हैं जिन्होंने एक छोटी सी आयु में ही ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोहा लिया और पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय संस्कृति की रक्षा की, पूर्वोत्तर भारत की संप्रभुता की रक्षा की और स्वतंत्रता संग्राम में बड़े सुनहरे अक्षरों में उनका नाम आज लिखा जाता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सामाजिक कार्यों में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। समाज और देश की सेवा में उनके इस अतुलनीय योगदान से उन्हें आज हम एक बहुत बड़ी प्रेरणा के तौर पर याद करते हैं। तो आइए रानी गाइडिनलियो के व्यक्तित्व पर एक खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आप तक ये भी बात पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत उन महान विभूतियों से सुशोभित है जिन्होंने देश सेवा राष्ट्र सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं।
भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लंबी यात्रा में असंख्य वीरों और वीरांगनाओं ने अपना जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया। पूर्वोत्तर की भूमि भी त्याग और बलिदान की गाथा से भरी पड़ी है। यह क्षेत्र न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ के लोगों में देशभक्ति की गहरी भावना हमेशा से रही है। इन्हीं में से एक थी रानी गाइडिनलियो जिन्होंने अपने साहस नेतृत्व और अटूट विश्वास से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और पूर्वोत्तर की जनता में स्वाधीनता की चेतना जगाई।
ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले है तिरंगा शान अपनी देंगे इस पे जान अपनी जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले।
रानी गाइडिनलियो का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में हुआ था। वे ज़ेलियांगरोंग जनजाति से थीं, जो नागालैंड मणिपुर और असम के कुछ हिस्सों में निवास करती है। बचपन से ही उनमें अद्भुत जिज्ञासा तेज बुद्धि और नेतृत्व के गुण थे। उन्होंने अपने समुदाय के धार्मिक और सामाजिक सुधारक जादोनांग से प्रेरणा ली। जादोनांग उस समय ब्रिटिश शासन के विरोध में एक आंदोलन चला रहे थे। इसका उद्देश्य था अपनी भूमि अपनी संस्कृति और अपनी आस्था की रक्षा करना। वर्ष 1931 में जब ब्रिटिश सरकार ने जादोनांग को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी तब मात्र 16 वर्ष की आयु में गाइडिनलियो ने उस अधूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने क्षेत्र के युवाओं और ग्रामीणों को संगठित किया और हिरेका आंदोलन की अगुवाई की। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष और अपने समुदाय को आत्मनिर्भर एकजुट और जागरूक बनाना। गाइडिनलियो ने कहा था हम अपने पर्वतों और नदियों की रक्षा करेंगे क्योंकि यही हमारी पहचान है। उनके नेतृत्व में पहाड़ी इलाकों में कई गांवों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने छापामार शैली में काम किया ब्रिटिश पुलिस चौकियों पर हमले किए और लोगों को स्वतंत्रता के लिए संगठित किया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें खतरनाक महिला घोषित किया और उनके सिर पर इनाम रखा।
मिटाने से नहीं मिटते डराने से नहीं डरते वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते।
1932 में रानी गाइडिनलियो को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय वे केवल 17 वर्ष की थीं। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वे नागालैंड गुवाहाटी और फिर आइजोल की जेलों में रखी गईं। कारागार की कठिन परिस्थितियों में भी उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उन्होंने अपने साथियों को संदेश भेजा कि स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखनी चाहिए। महात्मा गांधी ने रानी गाइडिनलियो के साहस और नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत की बेटी कहा था जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी। यही कारण है कि वे बाद में रानी गाइडिनलियो के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब वे रिहा की गईं। उस समय उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता केवल दिल्ली या मुंबई तक सीमित नहीं है बल्कि उसे हर गाँव और हर पहाड़ी तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने जीवन के शेष वर्ष अपने समाज के उत्थान में लगाए। वे पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में घूम घूम कर लोगों को शिक्षा, एकता और आत्मनिर्भरता का संदेश देती रहीं। वे सदैव कहती थीं, हम भारतीय हैं और भारत ही हमारी मातृभूमि है। रानी गाइदिनल्यू ने अपने क्षेत्र में भारतीय एकता की भावना को मजबूत किया। उन्होंने उस समय भी भारत के साथ जुड़ाव की वकालत की जब कुछ शक्तियां पूर्वोत्तर को अलग पहचान देने की बात करती थीं। वे दृढ़ता से कहती थीं कि भारत एक है और उसका हर हिस्सा समान रूप से महत्वपूर्ण है। रानी गाइदिनल्यू का जीवन हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल मैदानों में लड़ी गई लड़ाई का नाम नहीं, बल्कि ये उन दूरस्थ पहाड़ियों में भी लड़ी गई थी जहां लोग अपने विश्वास, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। वे पूर्वोत्तर की महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गईं। उन्होंने ये साबित किया कि नारी शक्ति किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए आगे आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत ने ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं जिन्होंने इतिहास में अमर स्थान पाया। असम की कनकलता बरुआ ने तिरंगा थामे गोली खाई, मणिपुर की यशेमना पारम्बुला ने अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन चलाया, नागालैंड के जादोनांग ने विदेशी शासन को ललकारा और अरुणाचल प्रदेश के मोमिन राय जैसे योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह क्षेत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उस अदृश्य परंतु सशक्त धारा का प्रतीक है जिसने पूरे देश में आत्मबल जगाया। रानी गाइदिनल्यू का निधन 17 फरवरी 1993 को हुआ। वे लगभग 78 वर्ष की थीं। भारत सरकार ने उनके योगदान को सम्मानित करते हुए 1996 में उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया। मणिपुर और नागालैंड में उनके नाम से कई स्मारक और संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तब हमें ये याद रखना चाहिए कि ये स्वतंत्रता केवल कुछ महानगरों की देन नहीं बल्कि ये उन पहाड़ों, वादियों और गांवों की भी देन है जहां रानी गाइदिनल्यू जैसी वीरांगनाओं ने अपने जीवन की आहुति दी। रानी गाइदिनल्यू की गाथा हमें ये संदेश देती है कि स्वाधीनता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने आत्म सम्मान की रक्षा भी है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी रुकना नहीं चाहिए। आज भी जब पूर्वोत्तर की घाटियों में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो रानी गाइदिनल्यू की आवाज को लेकर आती हो। स्वतंत्रता का दीप जलता रहे चाहे आंधियां कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मुकेश कुमार।
श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी। उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।